इस संघर्ष में इतना समय बिता देते हैं कि संघर्ष भी हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है कि यस सुबह उठना है, भागना है, दौड़ना है, शाम को आना, थके हारे सोना है, खाना है, और फिर अगले दिन फिर से संघर्ष करना है। और इस संघर्ष में जीवन कितनी बार ऊपर जाता है, कितनी बार नीचे आता है। ऊपर मतलब थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है, फिर कुछ दुख प्राप्त होता है। और दुख की बात करें तो हर व्यक्ति दुखी है, जिसने भी जन्म लिया है उसको दुख मिलने ही मिलने हैं, संघर्ष होना ही होना है। किस प्रकार के दुख? हर व्यक्ति दुखी है। कोई व्यक्ति अपने माता पिता से दुखी है क्योंकि वो उसको उसकी इच्छाएं पूरी करने नहीं देते, और माता पिता अपने बच्चों से परेशान है क्योंकि वो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। पति अपनी पत्नी से परेशान है क्योंकि उसकी बात नहीं मानती, और पत्नी अपने पति से परेशान है क्योंकि उसकी डिमांड पूरी नहीं करते। पति पत्नी के अंदर बनती है, बच्चों से बनती है, तो इन चारों की अपने माता पिता से नहीं बनती है। माता पिता परेशान है कि मेरी बात नहीं मानते, और बच्चों को लगता है कि हमारी बात नहीं सुनते। अगर घर में इन सब दिक्कतों के अलावा पड़ोसी के साथ भी दिक्कत चल रही है, रिलेटिव्स के बीच में प्रॉब्लम है कि उसके पास इतना सुख कैसा, उसके पास इतना धन क्यों, या वो मुझसे अधिक सुंदर क्यों, या उसकी हाइट मेरे से ज्यादा अच्छी क्यों, तो उसके पास मेरे से अच्छे कपड़े क्यों। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नाना प्रकार की दिक्कतों से परेशानी से जूझ रहा है। कोई सर्विसमैन है तो कोई बिजनेसमैन है। सर्विसमैन अपने बॉस से परेशान है, अपने कलीग से परेशान है। बिजनेसमैन अपनी पार्टी से परेशान है जिसे पेमेंट नहीं मिलती। वो ऑर्डर्स की इनसिक्योरिटी से परेशान है, और घर आकर तो अलग से परेशान है। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति परेशान है। सब कुछ ठीक है तो पड़ोसी से परेशान है, वो भी ठीक है तो घर में मच्छरों से परेशान है, ये भी ठीक है तो अपने मानसिक तनावों से परेशान है कि भविष्य में क्या होगा, और वो भी ठीक है इन संघर्षों के साथ तो फिर परेशान है कि मेरी जो बीमारी थी वो बढ़ती जा रही है, शरीर से परेशान है। अपने शरीर में ठीक है तो दूसरे के शरीर, अर्थात किसी अपने क्लोज रिलेटिव के शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उससे परेशान है। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही है, मेरा सुंदर शरीर मेरे से छीना जा रहा है, तो इसके व्यक्ति इनसिक्योर है। तो परेशानियों का कोई अंत नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं है, संघर्षों का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर इन संघर्षों के बीच भी व्यक्ति आनंद में जीवन जीना चाहता है, सुखी सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो उसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना पड़ेगा इस मशीनरी को ठीक ढंग से चलाने के लिए, और वो है भगवत गीता, जिसमें लिखा है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, प्रकृति के तीनों गुण मेरे ऊपर कैसे हावी होते हैं, किस प्रकार मैं इनके अंतर्गत कार्य करता हूं, किस प्रकार दुख और सुख में मुझे संभाव रहना है, किस प्रकार भगवान की भक्ति कर मैं इस जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकता हूं। इतना आसान रास्ता है सबको समझने का, लेकिन फिर भी व्यक्ति इन रास्तों को जानते हुए समझते हुए भी उन सब चीजों को उपाय नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं भी संघर्ष करूं, क्योंकि मेरे आगे वाले जो मेरे से पहले मेरे सीनियर थे उन्होंने भी संघर्ष किया है, तो संघर्ष की आदत पड़ जाती है, अर्थात इस संसार को दुख पूर्वक जीने का एक आदत से पड़ जाती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इन दुखों से अपने को बचाने का प्रयास करता है और भगवान के नाम की शरण लेता है। शास्त्रों में कहा गया है जो इस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा हुआ है, अपन्न संसर्तिम घोराम या नाम अविश्व गृणन, कि जो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है तत्सत्यम उच्चेता, अर्थात उसका संसार भर में जीवन जो है उथल पुथल के साथ चल रहा हो, जन्म मृत्यु के संघर्ष में फंसा हो, लेकिन एक बार भी भगवान का वो नाम अपनी जुबान पर ले लेता है तो विमुच्चेता मुक्त हो जाता है इन सब संघर्षों, अर्थात मुक्ति के काबिल बन जाता है। क्या करने से? भगवान का नाम लेने से। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी पूरा विश्वास होना चाहिए, और इस प्रकार व्यक्ति अपने दुखों का निवारण कर सकता है। इस संसार भर में जब प्रभुपाद जी ने विदेशों में प्रचार किया तो पूरे संसार भर में लोग जो कृष्ण और राम को नहीं जानते थे आज सबसे सुखी हैं पूरे संसार में, जिन्होंने हरिनाम की शरण ली। क्या किया, अपने जीवन को आसान बना लिया। जो कॉम्प्लिकेशंस थी लाइफ की उससे थोड़ा सा पीछे हट गया, अपने कर्तव्य को पूरा किया और अपने समय का सही यूटिलाइजेशन किया। 24 घंटे हर एक के पास, लेकिन क्या करना होगा, इस लाइफ को जीना कैसे वो सीखना होगा। हमने कैसे सीखा, हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि जब बिजनेस में लॉस होता है तो पिताजी गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। जब आपस में झगड़ा होता है तो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होते हैं, अपना गुस्सा उतारते हैं। जब कुछ मिल जाती है चीज अच्छी तो बड़े खुश होते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो ये सारे जो हम लोग एग्जाम्पल अपने बच्चों को करके दिखाते हैं कि जब दुख आए तो दुखी हो जाओ, रोलो, जब सुख आए तो खुशी हो लो, खुश हो लो, तो बच्चों को समझ आता है कि हाँ यही करना है जीवन में। अगर किसी परिवार में भगवद गीता का आचरण शुरू से हुआ है तो जानता है कि सुख और दुख तो गर्मी और सर्दी के समान है। तान प्रत्यक्ष भारत, इसको सहन करना सीखना है। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति उन सुख और दुखों को सहन करता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो संतान ये सब जब सीखती है तब उनको लगता है कि हाँ जीवन तो अब है। तो हमें आदर्श बनना पड़ेगा अपने बच्चों का, नहीं तो वो भी हमारी तरह संघर्ष कर करके एक दिन हमारी तरह हो जाएंगे, दुख में दुखी और सुख में सो कॉल्ड सुखी। तो वास्तव में अगर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है जीवन की, तो उसे भगवान का नाम लेना ही होगा, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। शास्त्र बता है, हरे नाम हरिर्नामेव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही उद्धार करने वाला है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये बृहद नारायण पुराण में कहा है, मनुष्यों के लिए कहा गया है। कहा गया है कलिर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजे। मतलब ये सागर है दोषों का कलयुग, कलयुग तो घनघोर दोषों का सागर है, लेकिन अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है इसमें और वो है कीर्तन देव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन का गान करना। अगर उनके नामों का गुणगान करते हैं तो क्या होगा, मुक्त संगम परम व्रजे, हमें संसार के संसर्ग से दुखों से मुक्त हो जाएंगे और परम व्रजे परम धाम को प्राप्त करेंगे भगवान के चरण कमलों। क्या करना होगा, भगवान के नाम लेना, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल टाइम की और फिर जीवन की जो कि भगवान ने दी है जपने के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट। हरे कृष्ण, फिर से हम हरिनाम कीर्तन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे साथ उच्च स्वर में कीर्तन करें, ठीक है। हरे कृष्णा Thank you.
Thank you. Thank you.
तो देखिए भगवान के नामों में शक्ति पूरा का पूरा वातावरण बदल देता है। बताते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़े घास के, सूखी घास के ढेर में अगर हम अगली लगाएं तो कितना टाइम लगे जलाने में, कुछ क्षण लगेंगे और पूरे के पूरे टीले को या पूरे पहाड़ जितने घास को भी सुखा सकता है, जला सकता है। इसी तरह बताया गया है कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि हमने जन्मों जन्मों के कितने पाप करके इकट्ठे किए हों, भगवान के नामों के सामने जैसे ही नाम जपते हैं तो उतने इतने जन्मों के पाप इस प्रकार जलते हैं, स्वाहा होते हैं, जिस प्रकार घास फूस का पहाड़ भी हो जो तीली लगाने से जल जाता है। क्या करने से, कल भगवान के नाम। अब कोई यह बोले भैया ढंग नाम लेने से हो जाता है तो अभी पाप भी कर सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, दोनों इकट्ठा करते हैं, तो ऐसा करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो दूसरी श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आ जाए। आप लोगों ने अजामिल का नाम सुना होगा, है ना। अजामिल एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन गलत संगति के कारण एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया और फिर अपनी सारी जमा पूंजी उसके पीछे लुटा डाली, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, अपनी सुंदर बीवी को छोड़ दिया और उस वैश्या के चक्कर में लोगों को लूटने लगा, उनकी चोरी करने लगा, डाके डालने लगा और सबको खुश करने के लिए। श्रीमद भागवतम में कथा, ब्राह्मण होते हुए भी गलत संगति के कारण गलत चक्कर में फंस गए, सारे के सारे उसके जो सुंदर गुण थे सब खत्म। समय बीतता गया, 10 संतानें हुई उसको उस वैश्या से। 88 साल के जब थे तो सबसे छोटी संतान उसकी थी 3 साल का जो बच्चा, उसका नाम नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? नारायण। अब वृद्धावस्था में था, सबसे छोटे पुत्र से आसक्त हो गया, हर समय नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण तुमने खाना खाया कि नहीं, नारायण नारायण बोलता था, क्योंकि समय पूरा हो चुका था, पाप बहुत किए थे। अंतिम समय में उसको दर्शन हुआ किसका? यमराज के दूतों का। वो आ गए तीनों लेने के लिए, हमें तो दिखाई नहीं देते, अगर हमको दर्शन हो जाए तो कल से हम सुधर जाएंगे, वो पुलिस वालों की तरह नहीं देखने में, उनको तो रिश्वत देके कुछ भी करवा लो। लेकिन जब यमराज के दूत इतने खतरनाक थे कि उनको देखकर लोग मलमूत्र त्याग देते हैं बिस्तर के, यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए, चलो हमारे साथ, और उसके शरीर को के अंदर से सूक्ष्म शरीर और आत्मा उसको खींचने लगे। जब उसका दर्शन हुआ तो जोर से पुकारा, नारायण नारायण, घबरा कर। इसके लिए पुकारा था? अपने बेटे के लिए पुकारा। अब देखिए अंतिम समय में उसने भगवान का नाम लिया, नाम की महिमा। जैसे ही नाम लिया तो उसी समय भगवान विष्णु के भी 3 दूत वहां पहुंच गए और उन्होंने रोक दिया उसको, खबरदार तुम इसे नहीं ले जा सकते। कहते नहीं ले जा सकते, कहते तो बताओ तुम हो कौन, इतने सुंदर देखने में लग रहे हो, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हो, कहां से आए हो? कहते हम विष्णु दूत हैं और तुम इसको नहीं ले जा सकते। कहते भैया हमारे जो मालिक हैं यमराज जी, हम तो सोचते हैं वही सबसे बड़े हैं और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जो इस प्रकार के पापी लोग हैं, चोर उचक्के लोग हैं और जो इस प्रकार के नियम तोड़ते हैं उनको लेकर जाने का है। कहां पर, कहां से आए थे? नरक लोग। कहते ठीक है तुम्हारे शास्त्र ठीक हैं, लेकिन हमारे भी शास्त्र हैं, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कितने ही पापी क्यों ना हो, अंतिम समय में अगर भगवान का नाम ले ले तो उसके जितने भी सारे पाप थे, कितनी टेराबाइट की हार्ड ड्राइव क्यों ना भरी हो पापों से, वो एक बार में फॉर्मेट हो जाए। क्या करने से? हरि नाम लेने से, खाली बैलेंस एकदम खत्म। तो यमराज के दूत चकरा गए और उनसे डिफीट हो गए, उनको छोड़ना पड़ा उसको। और यमराज के पास दोबारा गए, कहा महाराज हम तो आप ही को समझते थे, यू आर द सुप्रीम हेड। कहते हाँ मैं हेड हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बट फॉर दिस पर्टिकुलर मृत्यु लोग ओनली, बाबा मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं, खाली बाहर के डिपार्टमेंट और भी बहुत लोग हैं। कहते हैं कि अब हमको साफ साफ बता दो कहां जाना है कहां नहीं जाना, ऐसे ऐसे गड़बड़ हो जाती है, वहां जाके चलान काटने लगते हैं तो लोग ऊपर से फोन करा देते हैं, तो किनको लाना है किनको नहीं लाना साफ से बताइए। उन्होंने बोला देखो तुम मेरे इस नर्क लोक में उन सबको लाओ जो शास्त्रों के विपरीत चलते हैं, मनुष्य योनि का दुरुपयोग करते हैं, जिनके मुख से कभी भगवान का नाम ना निकला, जो भगवान का नाम ना लेते हो, जो धार्मिक कार्य में ना लगे हों, उसके उल्टे पाप करते हो, मांसाहारी हो, हर तरह के गलत काम, उनको लाओ ना मेरे पास, ये धाम तो बनाए उनके लिए नरक धाम कहते, लेकिन खबर ला उनके पास मत जाना जो विष्णु के भक्त हो। कहते पहचान, कहते हैं आप उनके मस्तक पर तिलक देखना, वैष्णव तिलक होता है, वैष्णव तिलक ऐसे दो चरण होते हैं, नाक पर तुलसी, या फिर उनके गले में देखना कंठी की माला होगी, कंठी तुलसी की माला होती, कंठ में लगी होती है, ताकि वो दूर से दिखाए दे, चाहे वो कमीज पहने चाहे स्वेटर पहने। कहते और क्या, कहते भगवान का नाम जपते हैं, उनके पास नहीं जाना। कहते बाकी दूसरों को ला सकते हो। कई बार प्रभुपाद जी बोलते थे गॉड बेल्ट है, गॉड बेल्ट, गॉड बेल्ट मतलब कि इससे पहचान मिलती है कि किसके हैं, भगवान के हैं। और एग्जांपल देते हुए समझाते थे कि सड़कों पे कई बार बहुत सारे डॉगीज घूम रहे होते हैं, तो अंजलि की गाड़ी आती है लेने के लिए, तो सबको ले जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ देती है जिनकी गले में बेल्ट होती है, उनको मालूम होता है ये किसी न किसी कनेक्टेड है। तो उसी तरह गॉड बेल्ट है, यमराज के दूत उनको छोड़ते छूटते तक उनके पास में नहीं जाते, गलती होगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो यमराज के दूतों को सामना करना पड़ा विष्णु दूतों का, और छोड़ना पड़ा उस अजामिल को। क्या किया था उसने, केवल नारायण पुकारा था। आपको लोग फिक्शन है, कोई ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं आप हमें डराने के लिए और अंतिम समय में नाम निकलवाने के लिए। इस हमारे जो ये सिद्धांत है, ये जो हम लोग जिस सनातन धर्म का पालन करते हैं, उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, अरबों अरबों साल पुरानी है। कितने कितने अवतार हो चुके हैं भगवान के, और कितने कितने वो तीर्थ स्थल आज भी है जहां जहां लीलाएं करके गए। वो वृंदावन यहां पर है जहां पर 5,000 साल पहले भगवान अवतरित थे, वो वृक्ष यहां पर है जिस पर भगवान ने चढ़कर छलांग लगाई यमुना कालिया को मारने के, वो वृंदावन की रज है, वो गोवर्धन अभी है जिसको भगवान ने उठाया अपने बाएं हाथ की बाएं उंगली में, सबसे छोटी उंगली में, 7 दिन और 7 रातों के लिए, जिसके आप चक्कर काटते काटते चक्कर आ जाते हैं ना, वृंदावन में गोवर्धन अभी भी है, वो यमुना नदी भी अभी बह रही है जहां के तट पर भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं करी। इससे पिछले अवतार में जब राम रूप में आए तो अयोध्या भी यही पर है, इसी देश में है कि नहीं, हमने तो नहीं नामकरण किया, आपके चाचा ने, मेरे मामा ने, किसी ने तो लिखा ना कि आज से बेटा इसको अयोध्या बोलेंगे, कहीं किताब में लिखा हो पाया नहीं, पहले से नाम अयोध्या, सदियों नदी साथ में बह रही है। वो पुल भी अभी दिखाई देता है सैटेलाइट से, जो ब्रिज भगवान ने बनाया वानरों की मदद से, देखा किसी ने, कईयों के घरों में उसके पत्थर पड़े उस राम से जो डूबता नहीं पानी में। तो इस प्रकार वो सारी की सारी लीलाएं जहां घटित हुई वो आज भी हैं, वो सारा इतिहास लिखा हुआ है। ये तो माया का उतना खतरनाक पाश हमारे ऊपर पड़ा है कि हम लोग उन चीजों को याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, आउट ऑफ इग्नोरेंस। इस मटीरियल चकाचौंध में संसार की हम ऐसे भूल गए सब चीजों को कि हम लोग याद भी नहीं करना चाहते। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो फिलॉसफी में जी रहे, जस्ट डू इट, हु नोज, किसने देखा है, सब डराने के लिए, नो प्रॉब्लम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, अरे बाबा जस्ट ट्राई टू सी, दुख दोषानु का दर्शन कीजिए, जन्म का बर्थ हो रहा है हर जगह। आज हम हितेश के बर्थडे में आए, कौन सी चोला सेरेमनी है बच्चे, तो जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, मनुष्यों में नहीं, अनेक प्रकार की 84 लाख जीवन है, हर जगह जन्म हो रहा है, हर जगह बुढ़ापा है, हर जगह मृत्यु है, ये सब हम देख रहे हैं, फिर भी आंखें बंद की हुई है, नहीं मेरे साथ नहीं होगा, who knows, who cares, just do it। और ये फिलॉसफी, जस्ट डू इट फिलॉसफी, हम लोगों को प्रेरित करती है टू डू मोर सिन और पाप करने के प्रेरित। मूवीज भी ऐसी बनाई जाती हैं है ना, पीके मूवीज बनाई जाती है, लगता है कि पी रखी है किसने, चलो नहीं। इस प्रकार से माहौल तैयार किया जाता है कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन से आपको ये समझाएं दें, देयर इज नो गॉड, डज गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ओ माय गॉड। हाँ, अमेरिकन कल्चर, जो 200 जिनका कोई कल्चर नहीं था, 200 साल लग गए जिनको बिगड़ने में, बिगड़ते बिगड़ते आज जिस पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, इंटरनेट और मोबाइल की वजह से इंडियंस इमीडिएटली बिगड़ गए, और अब यहां पर इतनी खतरनाक खतरनाक वारदातें वारदात हो रही हैं, पूछो ही मत, परेशान है, क्या करें, क्या हो गया हमारे साथ, अचानक ऐसे। इस संसार का तो, इस देश का तो कल्चर था, ये सारे के सारे जो भगवान जितने बार अवतरित हुए, भगवान ने कहा मैं रिलीजियस प्रिंसिपल को फिर से सेटअप करने गया था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवती भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है फिर से मैं आता हूं और फिर से धर्म के प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करता हूं। लोग भूल जाते हैं, मैं फिर से याद दिलाता हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसे व्यक्ति बोलता है हू केयर्स, किसने देखा, तो ये बोलते ही वो एकदम नास्तिक हो जाता है, एकदम नास्तिक। जैसे कई परिवारों में जो धन आ जाता है और माता पिता ना हो या माता पिता चले जाएं, उसके बाद धन छोड़ जाएं, तो क्या करता है बच्चा, उसका मिसयूज करता है, हू केयर्स, नोबडी नोज, चलने तो अब जो चलता है। उसी तरह कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी हो, कोई नहीं चाहता कि मेरे सर पर कोई हो मुझे टोकने वाला, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू, जो मैं करना चाहता हूं लेट मी डू दैट सॉर्ट, मुझे क्यों रोक रहे हो आप, मेरा मन जो चाहता है करने दो, मन तो चाहता है पाप करे, चाहता है कि नहीं, मन में जो है वो करे। और इस प्रकार व्यक्ति सबसे पहले भगवान की भगवत्ता को नकारता है, उनको नकारने के बाद उसको लगता है कि अगर मैंने बोल दिया कि भगवान है तो मुझे फिर सारी बात माननी पड़ेगी, अगर मैंने बोल दिया कि मैं आस्तिक हूं तो मानना पड़ेगा कोई भगवान है, अगर भगवान को मानता हूं तो फिर उनकी बोली हुई बातें अर्थात भगवत गीता और भागवतम को भी मानना पड़ेगा, उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ग और नरक को भी मानना पड़ेगा, नरक को मानेंगे तो 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं, अलग अलग नरक में कौन कौन सी सजा मिलती है वो भी मानना पड़ेगा, सब कुछ मानना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया क्या करें, मानो ही नहीं, आंखें बंद कर लो, ठीक उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को देखती है और आंखें बंद कर देती है, ओ गई, और बिल्ली क्या करती, कहती थैंक यू, आराम से खा जाती है, कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो। और हम भी उस प्रकार जीना चाह रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार जीना चाह रहे हैं, लेकिन इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में हम लोगों ने भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से शास्त्रों को हमें दिया है और बड़ा प्रैक्टिकली लाइफ में उतारने लायक सिद्धांत हमें पेश किया है। गिरे था के बने था को सदा हरि बोलेगा, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, सन्यासी बन के रहो चाहे गृहस्थी में रहो, लेकिन क्या करो, सदा हरि बोलेगा, सदा हरि का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये करना, क्या होगा इससे, ये भगवान के नाम है, भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, और हम भी आत्मा हैं तो भगवान के स्पिरिचुअल एनर्जी हैं। तो जब जीवात्मा भगवान के नामों का उच्चारण करता है, जो नाम भी स्पिरिचुअल हैं, तो ये आत्मा की उस भूख को, उस डिससेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करता है, उसको नरिश करता है, जो सुख, ये शांति, हैप्पीनेस जो हम यहां ढूंढ रहे हैं संसार में अलग अलग एक्टिविटीज में, जो हमें नहीं मिल रही है कितने ही प्रयास कर रहे हैं, वो मिलती है कब, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए जो लोग भगवान के नाम को उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, भगवान के संदेश को पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो लोग भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। हरे कृष्णा, थोड़ी सी शांति बनाए रखें, कोई थोड़ा चुप। तो इस प्रकार अगर हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करें, उनके नामों की शरण ग्रहण करें, और किस प्रकार करें, आंखें बंद करके नहीं, पहले पढ़ें समझें फिर करें, नहीं तो आप किसी की भी शरण में जाओ, पता नहीं जिसकी शरण लिए कल को वो खुद किसी की शरण में हो, है ना, जेल की शरण में या किसकी शरण में। इसलिए पहले पढ़ें भगवत गीता, भागवतम, उसमें गुरु की क्वालिटीज को सीखें, उसमें वैष्णव की क्वालिटीज को समझें और फिर उसको फॉलो करें। इतना सा करने से हम लोग अपने जीवन को सुंदर और सुखी बना सकते हैं। जब हम सुखी होंगे तो हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को भी सुखी देख सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे ये प्रचार का मोमेंट है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भगवान की शरण में जोड़ने का प्रयास करता है। इस मोमेंट में हर व्यक्ति किसी न किसी की मदद करना चाहता है। कभी व्यक्ति देखता है कि इस गरीब व्यक्ति को मैं कुछ खिला दूं, इसको कुछ कपड़े दे दूं, इसके लिए कुछ अच्छा कर दूं, पैसे दे दूं, लेकिन ये उसके लिए परमानेंट का मदद नहीं कहलाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को, उस बच्चे को उसके पिता से मिला दे तो उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। उसी प्रकार इस्लाम क्या कर रहा है, पूरे संसार भर में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहा है और उसमें हर प्रकार की आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए म्यूजियम, प्रीचिंग इक्विपमेंट्स रखता है ताकि वो इस संसार की सो कॉल्ड एजुकेटेड मॉडर्न जनरेशन को भी भगवान की भक्ति में ला सके। तो अभी आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर इस्कॉन रोहिणी में बन रहा है, सेक्टर 25 में, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे हम हॉस्पिटल भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जहां पर जब हम लोग उसको बनाने में मदद करते हैं तो आने वाले समय में कितने ही लोग वहां से जो है फायदा उठाएंगे। जो लोग मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करेंगे तो उनका फायदा, जो वहां पर जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनका फायदा, जो वहां पर प्रवचन सुनेंगे उनका फायदा, जो कीर्तन में बैठेंगे उनका फायदा, जो केवल ऐसे ही घूमने के लिए आया है दर्शन कर लिए उसका भी फायदा, हर व्यक्ति का फायदा, हजारों लाखों की संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। और किनको जाएगा क्रेडिट? जिन्होंने अपनी जमा पूंजी से अपने कर्मों के फल को कुछ भगवान की सेवा में लगाया। भगवान की सेवा में लगाने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स देने से हमारा सारा पैसा वाइट हो जाता है, वैसे ही धन को भगवान की सेवा में लगाने से, अर्थात लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाने से हमारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। और इस प्रकार आज पूरे विश्वभर में मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इस परिवार से जुड़े हैं हमारे लोग काफी, जो मंदिर के लिए सहयोग कर रहे हैं। आप लोग भी इनसे संपर्क करके अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। और जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा में पैसा लगा दिया, धन लगा दिया अपना, आने वाले कई कई सैकड़ों वर्षों तक वो मंदिर वहां खड़ा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां जाएंगे दर्शन के लिए। हो सकता है वो व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति वहां ना जाए, बिजी हो, लेकिन इतने सारे लोग जो भक्ति कर रहे हैं उनकी भक्ति का भी कुछ अंश उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति ने उसको बनाने में मदद की। तो एक बार दोनों हाथों को ऊपर कीजिए हमारे साथ, सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।